उनका जैसा रूप है वैसा ही प्रतिबिंब पड़ता है, किंतु वो प्रतिबिंब है रश्मि चंद्रमा आकाश में, तो चंद्रमा की ज्योति तो परमात्मा है और शुद्ध हृदय की उपमा दर्पण के साथ दी गई है। आकाश की जो परमात्मा और दर्पण की जो शुद्ध हृदय और प्रतिबिंब की जो वो समभाव भाव जो जड़ है, अंतकरण जड़ है, अंतकरण का भाव जैसे जड़ है, तो इस समय भाव में उसका परमात्मा का आभास मात्र है, तो परमात्मा का स्वरूप भी सम है। तो इसलिए यह बात बतलाई गई, जिसके हृदय में समता है, जिसका मन समता में स्थित है, जैकी बुद्धि सम है, वो परमात्मा को प्राप्त हो चुका, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो हम लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, सब में हमारा संभाव होना चाहिए, मन के अनुकूल और मन के प्रतिकूल। तो अनुकूल और प्रतिकूल के बीच के मन जो गुणातीत महात्मा जो पुरुष होते हैं, उन दोनों में संभाव रहता है, भाव हो जाता है, सम दुख है सुख है स्वस्थ हो समलोष्टा समकांचनी तुल प्रिया प्रियो धीरस तुल निंदा प्रसंग स्तुति मान अपमान यो तुल्यो तुल्यो मिथ्याल पक्ष हो सर्वारंग परित्यागी गुणातीत उच्यते सगुणातीत उच्यते। वह गुणातीत कहलाता है कौन, सुख और दुख में जो समय संसार के मैं ख्याल करके देखो, सब सुख चाहते हैं तो कोई नहीं चाहता, तो प्रसन्नता कहां, सम दुख है सुख है स्वस्थ है, स्व जो है परमात्मा अपना असली स्वरूप उसमें जो स्थित है, तो कुछ सुख दुख में सम है। समलोष्टा समकांचन मिट्टी और पत्थर और सुवर्ण इन में स्त्री की समबुद्धि है, समभाव है, प्रिय अप्रिय अनुकूल प्रतिकूल इन दोनों में जो सम है, और धीर यानी ज्ञानी और अपनी कोई दूसरा स्तुति करता है या निंदा करता है, उस निंदा स्तुति के मां जो सम है, और मान और अपमान में जो सम है, बैरी और मित्र की पक्ष में जो सम है, और कर्मों के मां कर्तापने का अभाव है, माने कर्तापने के अभाव से रहित है, वह तो सारे आर्मों का परित्यागी पुरुष गुणातीत कहलाता है। गुणातीत से उच्च गुणातीत माने जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा पुरुष, ये लक्षण है। तो सबके मन प्रधान बात क्या है कि सम, तो मन के जो प्रतिकूल भाव है उसमें भी प्रतिकूलता को हटाना है, सम में एक भाव करना है, तो किसमें समावेश करना चाहिए, अनुकूलता। जो भी कुछ चेष्टा होती है भगवान की इच्छा के अनुसार होती है, हमारे तो मन के प्रतिकूल है किंतु भगवान के तो मन के अनुकूल है, तो अपने को तो भगवान की अनुकूलता में अनुकूलता का समावेश करना है। भगवान के जो अनुकूल वही हमारे अनुकूल, भगवान का जो सिद्धांत वही अपना सिद्धांत। तो जो भी कुछ होता है वो तो भगवान का विधान है, वो न्यायुक्त है और मंगलमय है, इसलिए उसको भगवान की लीला समझना चाहिए। लीला का तत्व है समझने के बाद में फिर समझना अपने आप योग्यता हो जाए, इसमें दो भेद नहीं होते लीला के वहां, ये तो अनुकूल ये प्रतिकूल, दो भेद हो तो लीला नहीं। ये समझ लिया जाए कि जो भी कुछ हो रहा है भगवान की लीला हो रही है, तो प्रतिकूलता को वहां गुंजाइश नहीं है। अब प्रतिकूलता में जब गुंजाइश नहीं है, तो फिर ये जो जितने वास्तविक कौन से विकार हैं, सब नष्ट हो जाते। प्रतिकूलता में भय होता है, प्रतिकूलता में द्वेष होता है, प्रतिकूलता में बैर होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है, प्रतिकूलता में चिंता होती है, प्रतिकूलता में ईर्ष्या होती है, ये सब प्रतिकूलता में होते हैं, सब स्वाहा। तो भगवान कहते हैं कि हर्षा हर्ष भयोदेगीर मुक्तो यह सच वेद प्रिय। हर्ष मान हर्ष ईर्षा भय उद्वेग से जो सर्वथा रहित है वह मेरा भक्त मुझको प्यारा है। भगवान निर्विकार और उसका भक्त निर्विकार, परमात्मा के तत्व का ज्ञान हो जाता है तो सब में समता हो जाए। यह जो द्वाल है इसके लिए सब सम है, जड है ना। यहां चाहे आप गालियां दो और चाहे किसी की प्रशंसा करो, चाहे द्वाल को गालियां दो द्वाल की प्रशंसा करो, या एक प्रकार से चुप है, दोनों में सम है। चाहे द्वाल जो है इसका अपमान करो चाहे इसका मान करो, इसका दोनों ही समान है। तो इस द्वाल के मापक बन जाना है। ज्वाल ऐसा जड़ है और हृदय ऐसा जड़ है, उस हृदय के साथ के बीच के मां जीवात्मा की एकता होकर के और एक प्रकार से उसका मालिक बन बैठता है, तो सारे विकार पैदा होते हैं। जब ये जीवात्मा इससे हटकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और केवल ये जब हृदय रह जाता है तो इसमें फिर कोई प्रकार का विकार नहीं होता, दोनों एक होने से विकार होते। जड़ और चेतन की जहां एकता है वहीं सब विकार पैदा होते। न केवल जड़ में विकार हो सकता है, न केवल चेतन, चेतन तो निर्विकार शुद्ध है ही, जड़ में विकार होता है और चेतन के संग से होता है वो विकार जड़ में। चेतन मान लेता अपन इस वास्ते वो जन्मता मरता रहता है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं संयोगो हे हेतु, हे माने त्यागने के योग जो दुख उसका नाम हे है, उस दुख का हेतु संयोग है, जड़ चेतन का संयोग या तो प्रकृति पुरुष का संयोग या आत्मा और बुद्धि का संयोग, एक ही बात है। बुद्धि कह दो प्रकृति कह दो जड़ कह दो, एक ही बात है। केवल जड़ पदार्थ में दुख नहीं हो सकता, कोई नहीं सकता। जितने जड़ पदार्थ है, दृश्य पदार्थ है, जिसके साथ में चेतन का संबंध नहीं है, ये पत्थर है, द्वार है, घड़ी है, बाजा है, इसको चाहे तोड़ डालो किसको दुख होगा। तो दुख को होगा जो इसको अपना मानता है, यानी ये बाजा मेरा, ये घड़ी मेरी, उसको दुख होता है। घड़ी को बाजा को नहीं होता, क्योंकि घड़ी और बाजा तो जड़ है। इस पर अधिकार जमाने वाला जो चेतन है, जड़ मिश्रित चेतन, बुद्धि से मिला हुआ चेतन, उसको दुख होता है, घड़ी को बाजे को तो होता है। इसी प्रकार से शरीर के भीतर में जो अंतःकरण बुद्धि और उसके मां जो एक व्यक्ति चेतन अपना घर जमा करके बैठे है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो सुखी दुखी होता है। इस जड़ के संयोग से, जड़ को आत्मा मानने से ऐसा एक क्यों हो रहा है? अविद्या से, अज्ञान से। तसे हेतु अविद्या, इस संयोग का जो हेतु है अविद्या है। जड़ और चेतन ये दोनों चीज परस्पर में एक दूसरे से भिन्न है, उस दोनों की जो एकता ज्ञान के कारण से मान रखी है, इसका कारण से सुख दुख होता है। इसमें हेतु केवल अज्ञान है, जो कहते अविद्या। अविद्या का मतलब है कि अनात्म जो देह आदि, उसमें जो आत्म बुद्धि है, इसका नाम अविद्या। शरीर आदि जो विनाशशील वस्तु है, इसको सत्य मानना, नित्य मानना, इसका नाम अविद्या। और ये शरीर दुख का घर है,
संसार के पीछे भोग सब दुख के घरों से दुख रूपी है, जिनको आप सुख समझते हो तो परिणाम में दुख देने वाले होने से और उसके संस्कार भी दुख देने वाले होने से सब दुख ही है। उस दुख में ही सुख बुद्धि है, यह अविद्या है। और शरीर जो महान अपवित्र है उसको मैं शरीर हूं ऐसा मान करके मैं पवित्र हूं मैं शुद्ध हूं, ये भी अविद्या ही। विपरीत ज्ञान का नाम अविद्या है। ये संयोग जो है उसमें हेतु अविद्या ज्ञान है। नहीं आत्मा चेतन शरीर जड़ इसका मेल कैसा सके? इस अज्ञान को दूर करने के वास्ते सबसे बढ़कर है ज्ञान। और उस ज्ञान की प्राप्ति होती है सत्पुरुषों के संग से, यानी ज्ञानियों के संग से ज्ञान मिलता है। और हम लोग अधिक संग अज्ञानियों का करते हैं तो अज्ञानियों के संग से ज्ञान दूर नहीं होता। दूसरा उपाय है महापुरुषों के जो वचन है, पत्र है, लेख है, उपदेश है या पुस्तकें हैं महापुरुषों का भी। महापुरुष जो भगवान श्री कृष्ण जी, उनका जो वचन है उपदेश वो तो साक्षात महान अमृत है। जैसे गीता और जितनी जो शास्त्र है वे ऋषियों के वचन है, महापुरुषों के वचन है, उनका संग माने उनमें प्रीति, उनका स्मरण कर करके उनको धारण करना, इससे ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी शास्त्र के अनुशीलन से ज्ञान होता है और सत्पुरुषों के संग से ज्ञान होता है। और निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया जाए तो फिर उसमें ज्ञान आप पैदा हो जाता है। पर लोग ईश्वर महात्मा शास्त्र इनके में विश्वास कर लिया जाए उसका नाम श्रद्धा, उस श्रद्धा से भी ज्ञान पैदा हो जाता है। और ईश्वर की भक्ति करने से ईश्वर की कृपा से भी ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान के जो बहुत से साधन बतलाए हैं उनका सेवन करने से भी ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के बहुत से उपाय हैं, उनमें कोई भी एक उपाय कर लेने से ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान होने से ज्ञान का नाश हो जाता है, जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ज्ञान के उदय होने से ज्ञान का नाश हो जाता है। गीता में सभी बात बताई, भक्ति करने से भगवान उसको ज्ञान देते हैं, ये तो भगवान ने गीता की 10वें अध्याय के 10 और 11 के श्लोक में बताया। और महात्मा पुरुषों की शरण जाने से ज्ञान हो जाता है, ये भगवान ने गीता की 4वें अध्याय के 34 के श्लोक में और 13वें अध्याय के 25 के श्लोक में बताया है। और निष्काम भाव से कर्म करने से अपने आप ही ज्ञान हो जाता है, ये भगवान ने 4वें अध्याय के 38 के श्लोक में बताया है। और ईश्वर परलोक और महात्मा और शास्त्र इनके में श्रद्धा करने से ज्ञान हो जाता है, ये 4वें अध्याय के 39 के श्लोक में बताया है। और ज्ञान के साधन से ज्ञान हो जाता है, ये भगवान ने गीता की 18वें अध्याय के 50 के श्लोक से लेकर के 55 के श्लोक के साधनों के द्वारा बताया। और साधनों का नाम ही ज्ञान है। ये गीता की 13वें अध्याय के 7 के श्लोक से लेकर के 11 के श्लोक तक होता है। तो गीता तो एक प्रकार से ज्ञान से ओतप्रोत हो रही है, भरी हुई है। उसका संपादन करने से ही मनुष्य को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। मनुष्य में राग द्वेष की मात्रा जितनी अधिक है उतना वो परमात्मा से दूर है। और राग द्वेष की जितनी मात्रा अधिक है उतनी उसमें विषमता, इतनी अंतःकरण में समता आ जाती है, राग द्वेष की मात्रा घटती घटती एकदम घट जाती है। समता ही परमात्मा का स्वरूप है, यानी स्वरूप की प्राप्ति में हेतु होने से स्वरूप ही कहे जा रहा है, कोई हेतु नहीं। समता एक कसौटी है साधक की और सिद्ध की दोनों की। जब समता नहीं है तो वो साधक साधक नहीं है, सिद्ध सिद्ध नहीं। समता को यहां तक पहुंचा देना है सम्म संभव,
यह विषमता है तो अज्ञानता है। एक भाई ने मेरी प्रशंसा कर दी और एक ने मेरी निंदा कर दी। एक ने कह दिया कि जय दयाल बड़ा अच्छा है, महात्मा है, ज्ञानी है, योगी है। उसने कह दिया कि नहीं, ये तो दम्भी है, पाखंडी है, बदमाश है, चोर है। दोनों के जो शब्द हैं वो वस्तु से क्या थी? आकाश का गुण। आकाश का गुण शब्द है, उससे आत्मा से उसका क्या संबंध? और वे जो निंदा करते किसकी? बोले जय दयाल की। बोले जय दयाल कौन? शरीर के बीच में जो आत्मा है उसका नाम तो जय दयाल हरि। आत्मा तो नित्य है और सत्य है। जब ये शरीर गर्भ के में था तब आत्मा तो मौजूद थी ही, किंतु जय दयाल नाम उस वक्त नहीं था। तो जय दयाल नाम तो एक औपचारिक है, कल्पा हुआ है, मिथ्या है। आत्मा जय दयाल कैसे हो सके? जब ये पैदा हुआ तो घरवालों ने कहा कि गीगला जाया, उस वक्त कोई जय दयाल नहीं था। किसने कहा लड़का पैदा? थोड़ा दिन के बाद परामर्श घर के बाहर इसका क्या नाम निकालना चाहिए लड़के का। कोई कहता है कि राम सिंह निकाल लो, कोई कहता है कृष्ण दत्त निकाल दो, कोई कहता है रामदत्त। या होते होते किसी ने कह दिया जय दयाल निकाल लो, तो जय दयाल काम कर। बहुत दिन तक तो मुझको यह मालूम ही नहीं रहा कि जय दयाल क्या बोल रहे हैं। बहुत दिनों के बाद एक प्रकार समझने लगेगा कि मुझको जय दयाल कह, उनका थका हुआ जो जय दयाल नाम उसको मैं अपना नाम मानने लगा। उसके बाद में कोई जय दयाल की निंदा करता है तो मैं समझने लगा मेरी निंदा ये लोग कर रहे हैं, स्तुति कोई करते हैं तो मैं समझ लगा ये मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो वास्तु के बीच में जय दयाल की निंदा, जय दयाल की स्तुति से मैं तो आत्मा हूं, मेरे से उसका क्या प्रयोजन? इसका नाम है ज्ञान। जब ज्ञान हो जाता है तो चाहे कोई निंदा करो चाहे कोई स्तुति। इसी प्रकार से मान अपमान के मां है। मान होता शरीर का और अपमान होता शरीर का। जो शरीर तो जय दयाल है नहीं, मैं तो कोई शरीर नहीं हूं, ये तो नाशवान है, घटता बढ़ता रहता है, एकदम विनाश होने वाला है। तो ऐसे एक बुत को, एक मांस के पिंड को मैं अपनी आत्मा मानूं कि ये मैं हूं, ये तो मूर्खता है। इसके मरने से अपना मरना, इसके कायम से अपना कायम रहना मानूं है, तो एक प्रकार से ये तो जन्मने मरने वाली चीज है। ये अपनी दर जो मानता है उसी के कारण से अपना जन्म और मरण होता रहता है। हरकत करके देखो शरीर आत्मा कैसे है। किसी कारण से हमारा हाथ कट जाए तो कटे हुए हाथ के भीतर फिर हमको अपनी आत्मा प्रतीत नहीं होती, चाहे उसको जगाओ चाहे गाड़ो, दर्द भी नहीं होता। क्यों? कि उसमें अपनी आत्मा नहीं मानता। और जहां अपनी आत्मा में मानता हूं वहीं दुख होता है। तो ये मानी हुई है बात, वास्तु के मां हुआ तो हाथ कटने के बाद में भी उसमें हमारी आत्मा प्रतीत होनी थी। तो बात तो सच्ची है नहीं, मानी हुई है। तो जब ऐसी बात है शरीर में किसी प्रकार से हुई नहीं, तो फिर एक प्रकार कोई शरीर का चाहे मान करो चाहे अपमान, कटे हुए जो हाथ है उसको कोई जलाओ चाहे काटो, तो जैसा वो हाथ है वो एक नमूना है, ऐसा ही दूसरा हाथ है, ऐसे हमारे दूसरे पैर है। ये बात समझ में आ जाए उसका नाम ज्ञान है। तो फिर मान अपमान दोनों समान हो जाते हैं, रत्ती भर भी उसमें फर्क नहीं रहता। हम देखते हैं कोई एक ज्वाल को गाल काटता है, एक ज्वाल को कोई प्रशंसा करता है, तो क्या उसका कोई हमारे ऊपर असर आता है? रस्ते में चलते हैं, समझो कि बहुत से पदार्थ मिलते हैं, कोई किसकी प्रशंसा कोई किसकी निंदा करता रहता, कौन ध्यान देता है? अपना कोई संबंध ही नहीं है। इसी प्रकार से थी जब ज्ञान हो जाता है तो ये सब पदार्थ सब समान हो जाते हैं, क्रिया सब समान हो जाती है, भाव सब समान हो जाते हैं। तो सारे पदार्थ सारी क्रिया सारे भाव सारी घटनाएं उसके एकदम सब समान,
स्वप्न से जागने के बाद में स्वप्न में जो घटना हुई उसमें फिर क्या कोई राग द्वेष रहता है? ये मालूम हो जाता है कि स्वप्न की जो घटना थी कुछ भी नहीं, सब एक प्रकार से काल्पनिक बात ही मन का संकल्प था। तो ये मालूम हो जाता है कि सब भगवान का संकल्प है और वास्तव में कोई चीज नहीं है, तो फिर कोई विकार नहीं होता, सब में समता आ जाती। बात को समझ करके सब में समता, इसके लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। वो ईश्वर की कृपा से भी ये समता आती है, महापुरुषों की के संग से भी ये बात आती है, शास्त्र के अनुशीलन से भी ये बात आती है, ईश्वर की भक्ति से भी ये बात आती है, और विचार से भी ये बात आती है, और अंतकरण शुद्ध होने से भी आती है, चाहे वो अंतकरण शुद्ध भगवान के भजन से हो, चाहे निष्काम कर्म, चाहे तीर्थ व्रत करने से हो, चाहे सत्संग से हो, अंतकरण शुद्ध होने से भी अपने आप ज्ञान पैदा हो जाता है। जैसे उज्ज्वल दर्पण के बीच के वहां प्रतिबिंब पड़ता है, अंतकरण को एकदम शुद्ध और उज्ज्वल बनाना चाहिए। सब में एक प्रकार से भगवान की भक्ति सुगम है, भक्ति करने से भगवान की कृपा से इस कलयुग के मां बहुत ही शीघ्र अंतकरण शुद्ध होकर परमात्मा ही प्राप्त हुआ। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण ஆனந்தியானும் ஆனந்தியானும் சாந்தி சாந்தி சாந்தி.